एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन के बारे में हमारी सोच को शायद हिला सकती है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जॉन ज़ेलाज़्विक्स की किताब जियोलॉजी, A very short introduction की।
अच्छा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की वो जानी मानी सीरीज है ना जो बड़े विषयों को कम शब्दों में समझाती है।
जी हाँ, वही।
तो भूविज्ञान यानी जियोलॉजी सुनने में शायद थोड़ा सूखा सा लगे, चट्टाने पत्थर, लेकिन ये आज इतनी जरूरी क्यों हो गई है?
यही तो बात है, ये सिर्फ चट्टानों का हिसाब किताब नहीं है, असल में तो ये हमारी पृथ्वी की आप कह सकते हैं 4.5 अरब साल लंबी कहानी है, उसकी आत्मकथा।
4.5 अरब साल?
हाँ, और इसे समझना अब सिर्फ मतलब वैज्ञानिकों का काम नहीं रहा।
मतलब
हमारे लिए कैसे जरूरी है ये?
देखिए, पृथ्वी के इस लंबे इतिहास को गहरा समय या डीप टाइम कहते हैं।
गहरा समय?
हाँ, इसे समझे बिना हम ये ठीक से नहीं समझ सकते कि हम इंसान अपने कामों से इस ग्रह पर कितना बड़ा असर डाल रहे हैं।
अच्छा,
इसी असर को तो अब एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग कहा जा रहा है।
एंथ्रोपोसीन, हाँ सुना है इसके बारे में।
तो ये किताब यही सवाल उठाती है, क्या पृथ्वी का अतीत हमें आज की मुश्किलों को समझने और आने वाले कल को संवारने में मदद कर सकता है? क्योंकि अब तो हम जाने अनजाने इस ग्रह के भविष्य को बदल रहे हैं।
दिलचस्प। तो इस गहरी सोच वाली किताब के पीछे कौन है? जॉन ज़ेलाज़्विक्स के बारे में कुछ बताइए।
जॉन ज़ेलाज़्विक्स ब्रिटेन के एक जाने माने भूवैज्ञानिक हैं और जीवाश्म विज्ञानी भी, यानी वो चट्टानों और उनमें दबे पुराने जीवों फॉसिल्स के विशेषज्ञ हैं। लीसेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी एक और पहचान है जो इस किताब को खास बनाती है ना? मैंने पढ़ा था कि वो एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप के मुखिया भी रह चुके हैं।
बिल्कुल सही, ये वो अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इंसानी असर इतना ज्यादा हो गया है कि हमें एक नए भूवैज्ञानिक युग एंथ्रोपोसीन की शुरुआत मान लेनी चाहिए। तो ज़ेलाज़्विक्स सिर्फ चट्टानों के विशेषज्ञ नहीं है, वो इस बात के भी एक्सपर्ट हैं कि इंसान कैसे भूवैज्ञानिक स्तर पर बदलाव ला रहा है।
अच्छा, मतलब वो चट्टानों की परतों को पढ़ना भी जानते हैं।
हाँ, स्ट्रेटिग्राफी जिसे कहते हैं।
और ये भी समझते हैं कि हमारी आज की हरकतें कल की चट्टानों में कैसे दर्ज होंगी।
ठीक का, और उनकी एक और खूबी है, वो मुश्किल विज्ञान को आम भाषा में कहानियों की तरह समझाने में माहिर है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि भूविज्ञान क्या है, बल्कि ये भी कि आज इसका हमारे लिए क्या मतलब है।
तो चलिए किताब पर आते हैं। संक्षेप में ये किताब क्या बताना चाहती है?
ये भूविज्ञान का एक परिचय है, लेकिन जैसा आपने कहा, बोरिंग टेक्स्ट बुक जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है हमारे अंदर की जिज्ञासा जगाना, हमें एक तरह की भूवैज्ञानिक साक्षरता देना।
भूवैज्ञानिक साक्षरता, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। मतलब अपने आसपास की दुनिया को सड़क के पत्थर से लेकर पहाड़ों तक एक नई नजर से देखना।
हाँ बिल्कुल, किताब हमें धरती के अंदरूनी हिस्सों से लेकर मतलब क्रस्ट मेंटल कोर, वहां से लेकर चट्टानों के बनने बिगड़ने के चक्र तक, जिसे रॉक साइकिल कहते हैं, वहां तक ले जाती है।
रॉक साइकिल।
हाँ, फिर बताती है कि कैसे महाद्वीप खिसकते हैं, पहाड़ बनते हैं, भूकंप आते हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत।
और ये सब हमें उस गहरे समय की विशालता का एहसास कराने के लिए है ना, कि 4.5 अरब साल के सामने हमारी जिंदगी कितनी छोटी है, कितनी क्षण भंगुर।
सही, बिल्कुल सही। और फिर किताब भूविज्ञान, मौसम और जीवन के रिश्तों को जोड़ती है, कैसे धरती ने जीवन को आकार दिया और कैसे जीवन ने, हाँ जीवन ने भी धरती को बदला।
अच्छा, जीवन ने धरती को कैसे बदला?
जैसे ऑक्सीजन बनाकर। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एंथ्रोपोसीन, कैसे हमारे प्लास्टिक, कंक्रीट, कार्बन उत्सर्जन, ये सब अब धरती की कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। हम खुद एक भूवैज्ञानिक ताकत बन गए हैं।
तो सिर्फ जानकारी नहीं, ये नजरिया बदलने की बात है। पृथ्वी को एक मशीन या स्टेज की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा बहुत पुरानी चीज की तरह देखना।
हाँ, एक सिस्टम की तरह,
जिसमें हम एक नए ताकतवर और शायद खतरनाक किरदार हैं।
बिल्कुल। चलिए अब कुछ मुख्य विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, किताब के अध्यायों में न उलझकर कुछ बड़ी बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो यही गहरा समय वाली बात।
हाँ, वो 4.5 अरब साल, उसे दिमाग में बिठाना ही मुश्किल
है ना, कल्पना करना भी कठिन है। जैसे अगर पृथ्वी का पूरा इतिहास 24 घंटे का हो, तो हम इंसान शायद आखिरी सेकंड में आए हैं।
सोचकर ही अजीब लगता है।
हाँ, ये सोचकर तो विनम्रता ही आती है। ये हमें हमारी जगह दिखाता है। हम सोचते हैं पहाड़ हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, पर भूविज्ञान बताता है कि पहाड़ भी बनते हैं, घिसते हैं, खत्म होते हैं।
अच्छा।
हाँ, बस इसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये स्थायी नहीं, बस एक प्रक्रिया का हिस्सा है।
और ये सब होता कैसे है? ये पहाड़ बनना, महाद्वीपों का खिसकना, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स आता है ना?
हाँ, ये आधुनिक भूविज्ञान का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, केंद्रीय आइडिया है। हमारी धरती की ऊपरी परत कई बड़ी बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है, जैसे किसी पहेली के टुकड़े। और ये टुकड़े नीचे की गर्म पिघली हुई चट्टानों पर बहुत धीरे धीरे तैर रहे हैं।
और जब ये प्लेटें टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या रगड़ खाती हैं, तभी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और हिमालय जैसे पहाड़ खड़े हो जाते हैं।
बिल्कुल, ये सिद्धांत इन सब बड़ी घटनाओं को एक साथ समझा देता है। ये बताता है कि धरती कोई शांत गोला नहीं, बल्कि अंदर से एक गर्म इंजन की तरह है जो लगातार सतह पर बदलाव ला रहा है।
ये जानना तो बहुत जरूरी है, खासकर भारत जैसे इलाकों में जहां भूकंप का खतरा रहता है।
सही कहा।
और चट्टानों का क्या? क्या वो भी बदलती रहती हैं? आपने रॉक साइकिल का जिक्र किया था।
हाँ, ये भी एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। चट्टानें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो लगातार एक रूप से दूसरे में बदलती रहती हैं। जैसे ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है, इग्नियस रॉक कहते हैं इसे।
जैसे ग्रेनाइट या बेसाल्ट।
हाँ बिल्कुल। फिर ये चट्टानें टूटकर घिसकर छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। ये टुकड़े पानी या हवा से बहकर कहीं जमा होते हैं, दबते हैं और अवसादी चट्टान बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक।
जैसे बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। और कोयला भी इसी तरह बनता है ना, दबे हुए पेड़ पौधों से।
बिल्कुल। और फिर अगर ये चट्टानें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव झेलती हैं तो वो रूपांतरित हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक।
जैसे चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है।
हाँ, और अगर तापमान और बढ़े तो वो पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती हैं, और चक्कर फिर से शुरू। ये धरती का अपना, आप कह सकते हैं, रिसाइकलिंग सिस्टम है।
वाह, मतलब जमीन भी स्थिर नहीं है, लगातार बदल रही है और इन चट्टानों की परतों में ही इतिहास छुपा है।
बिल्कुल, भूवैज्ञानिक इन्हीं परतों को, स्ट्रैटा कहते हैं इनको, इन्हें पढ़कर धरती का इतिहास जानते हैं। इसे स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। जैसे किताब के पन्ने होते हैं, वैसे ही ये परतें हैं।
नीचे की परतें पुरानी, ऊपर की नई।
हाँ, और इनमें मिलने वाले जीवाश्म, मतलब फॉसिल्स, वो बताते हैं कि उस जमाने में कौन से जीव थे, कैसा माहौल था, रेगिस्तान था या समुंदर। ये एक तरह की जासूसी है।
ये सब तो हुआ धरती के बारे में, लेकिन किताब जीवन और जलवायु, मतलब क्लाइमेट के बारे में भी बात करती है।
हाँ, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। देखिए, धरती का मौसम हमेशा बदलता रहा है। कभी धरती लगभग पूरी बर्फ से ढकी थी, उसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं।
स्नोबॉल अर्थ।
हाँ, तो कभी इतनी गर्म थी कि ध्रुवों पर भी बर्फ नहीं थी, हॉट हाउस अर्थ। इसके पीछे कई कारण हैं, धरती की कक्षा में बदलाव, महाद्वीपों की जगह बदलना, बड़े ज्वालामुखी विस्फोट।
तो आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो भी इसी का हिस्सा है?
नहीं, यहीं पर फर्क है। ज़लासिविक यही समझाते हैं कि हालांकि जलवायु हमेशा बदली है, लेकिन आज जो बदलाव हम देख रहे हैं वो इंसानी गतिविधियों की वजह से है, और उसकी रफ्तार भूवैज्ञानिक इतिहास में अभूतपूर्व है, मतलब बहुत तेज है।
ओ, ये गंभीर बात है।
हाँ।
और जीवन, उसका धरती से क्या लेना देना?
गहरा रिश्ता है। धरती की घटनाओं ने जीवन के विकास को रास्ता दिखाया, जैसे महाद्वीपों के अलग होने से नई प्रजातियां बनी, बड़े विनाश हुए, जैसे डायनासोर का खत्म होना, उसके बाद नए जीवों को मौका मिला।
और दूसरी तरफ, क्या जीवन ने भी धरती को बदला है?
हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा उदाहरण है ऑक्सीजन। शुरुआती छोटे जीवों ने ही हवा में ऑक्सीजन भरी, जिससे हम जैसे जटिल जीवन का रास्ता खुला।
अच्छा।
और कोयला, पेट्रोल, ये भी तो पुराने जीवन का ही बदलाव रूप है।
तो ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, पत्थर, हवा, पानी, जीवन।
हाँ, एक पूरा सिस्टम है।
और अब इस कहानी में एक नया किरदार आ गया है, इंसान, यानी एंथ्रोपोसीन।
हाँ, ये किताब का शायद सबसे जरूरी संदेश है आज के लिए। ज़लासिविक तर्क देते हैं कि हमारा असर अब इतना बड़ा और स्थायी हो गया है कि हम एक नया भूवैज्ञानिक युग शुरू कर चुके हैं। हमारे बनाए कंक्रीट, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, परमाणु परीक्षणों के निशान, प्रदूषण से निकली कालिक, कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा, ये सब आने वाले लाखों सालों तक चट्टानों में दर्ज रहेंगे।
बाप रे, मतलब हमारे शहर, हमारे फेंके हुए प्लास्टिक, ये भविष्य के जीवाश्म बनेंगे?
एक तरह से हाँ, हम अनजाने में ही सही एक भूवैज्ञानिक ताकत बन गए हैं। हम भविष्य की चट्टाने लिख रहे हैं।
तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? क्या है वो बड़े संदेश जो हमें याद रखने चाहिए?
मेरे ख्याल से पहली बात है गहरे समय की विशालता को समझना। यह हमें विनम्र बनाता है। हमारी रोजमर्रा की परेशानियां कितनी छोटी लगती हैं जब हम अरबों साल के पैमाने पर सोचते हैं।
हाँ, ये बात तो है। दूसरी बात शायद ये कि पृथ्वी एक जुड़ी हुई प्रणाली है। पत्थर, हवा, पानी, जीवन, मौसम सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
सही।
हम किसी एक चीज को बदलते हैं तो उसका असर सब पर पड़ता है।
सही।
जैसे भारत में हिमालय मानसून को प्रभावित करता है, या पेड़ों के कटने से मिट्टी का कटाव होता है, ये सब जुड़ा है।
बिल्कुल। तीसरा, भूविज्ञान एक कहानी है। धरती अपनी कहानी चट्टानों में लिखती है और भूवैज्ञानिक उसे पढ़ना सीखते हैं। हर पत्थर, हर पहाड़ के पीछे एक इतिहास है। ये एक तरह का जासूसी का काम है।
चौथा, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये समझना कि धरती की सतह हिलती है और इसी से भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ बनते हैं। यह हमें प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर समझने में मदद करता है, खासकर हमारे देश के लिए।
हाँ, पांचवा, जीवन और धरती का साथ साथ विकास। दोनों ने एक दूसरे को गढ़ा है। जीवन ने धरती को बदला, धरती ने जीवन को।
और छठा, सबसे जरूरी, आज के लिए एंथ्रोपोसीन, यानी हम इंसान अब एक भूवैज्ञानिक शक्ति हैं। हमारे काम अब सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि धरती के इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। भारत में बढ़ता प्लास्टिक कचरा या बड़े बड़े शहर, ये सब इसी का हिस्सा है।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं।
हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि ग्रह की 4.5 अरब साल की कहानी चट्टानों में लिखी है और मानवता का अध्याय अब तक अंतिम पृष्ठ पर केवल एक विस्फोटक वाक्य है। कितना सटीक है, हमारा असर कितना तेज और जबरदस्त है।
बिल्कुल। या ये कि हम अब केवल पृथ्वी पर नहीं रह रहे, हम वो परतें बना रहे हैं जिनका अध्ययन भविष्य के भूवैज्ञानिक करेंगे।
हमारे शहर हमारे जीवाश्म है, प्लास्टिक हमारे गाइड खनिज।
हाँ, ये एंथ्रोपोसीन की सीधी सपाट सच्चाई है।
और ये भी कि एक पहाड़ हमेशा टिके रहने का निशान नहीं बल्कि बनने और बिगड़ने के अंतहीन चक्र में एक पड़ाव भर है। चीजें बदलती हैं हमेशा, ये याद रखना जरूरी है।
साथ ही ये विचार कि वर्तमान अतीत की कुंजी है लेकिन अतीत भविष्य की भी कुंजी है। मतलब अगर हमें भविष्य की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटना है तो हमें धरती के अतीत को समझना होगा, उसे सीखना होगा।
और आखिर में वो बात कि चट्टाने सिर्फ चट्टाने नहीं है, वे दस्तावेज हैं। हर पत्थर एक कहानी कहता है, बस हमें उसे पढ़ना सीखना है।
तो सवाल उठता है कि इस ज्ञान का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें?
पहला तो यही कि गहरे समय का नजरिया हमें थोड़ा शांत और धैर्यवान बना सकता है ना? छोटी छोटी बातों पर कम परेशान होना, लंबी अवधि की सोचना।
हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये हमें पर्यावरण के मुद्दों, खासकर जलवायु परिवर्तन को सही संदर्भ में देखने में मदद करता है। ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है और क्यों तुरंत कुछ करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है।
तीसरा, संसाधनों का सही इस्तेमाल। पानी, खनिज, ये सब बनने में लाखों साल लगते हैं। भारत में जैसे जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है, ये एक भूवैज्ञानिक चिंता भी है। हमें इन्हें सोच समझकर खर्च करना होगा।
चौथा, प्राकृतिक खतरों से बचाओ। अगर हमें पता है कि कहाँ भूकंप का खतरा ज्यादा है या कहाँ भूस्खलन हो सकता है तो हम बेहतर योजना बना सकते हैं, सुरक्षित घर बना सकते हैं, शहरी नियोजन में मदद मिल सकती है।
और हाँ, अगली बार जब कहीं घूमने जाएं पहाड़ों में या समुद्र किनारे, तो वहां की चट्टानों को, नज़ारों को इस नई नज़र से देखें। हर जगह एक कहानी छिपी मिलेगी, अनुभव ज्यादा मज़ेदार हो जाएगा, ज्यादा गहरा।
बिल्कुल। और आखिर में ये वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, सबूतों के आधार पर सोचना, चीजों को एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में देखना, कारण और प्रभाव को समझना।
तो कुल मिलाकर इस किताब से सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन जिंदा है, बदल रही है, बहुत पुरानी है और हम इसके इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि अब हम इसका भविष्य लिख रहे हैं।
मेरे लिए तीन बातें सबसे खास रहीं। पहला, गहरे समय से मिलने वाला नजरिया और विनम्रता। दूसरा, पृथ्वी को एक जुड़ी हुई नाजुक प्रणाली के रूप में देखना। और तीसरा, एंथ्रोपोसीन में हमारी नई भारी जिम्मेदारी का एहसास। ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ, ये किताब हमें अपने ग्रह की कहानी पढ़ना सिखाती है और एक सवाल छोड़ जाती है, इस ज्ञान के साथ हम भविष्य का कौन सा अध्याय लिखना चुनेंगे? क्या हम इतिहास में सिर्फ एक विस्फोटक वाक्य बनकर रह जाएंगे
या एक समझदार, एक टिकाऊ कहानी रचेंगे?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।